मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 24 अप्रैल 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने जो विषय चुना है, यह विषय हमारे पिछले ही टॉपिक का कंटिन्यू है। दरअसल इससे पहले आपको ध्यान होगा, मैं ईगो के बारे में बात कर रहा था, खासकर लाल बत्ती के संदर्भ में, और फिर मेरे पास कुछ मेल आए हैं और उसमें एक दो प्रिय श्रोता ने यह जानना चाहा है कि सर, जो ईगो है और स्वाभिमान है, इसमें क्या अंतर है, क्या कोई अंतर भी है, हम किस सीमा तक अपने ईगो को खत्म करें, क्या हमें कोई बेइज्जत करता रहे, सताता रहे तो भी हम चुप रहें, इस तरह की कुछ उन्होंने अपनी समस्याएं भी मेरे सामने रखी हैं। मुझे मालूम था फ्रेंड्स कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, क्योंकि जब भी ईगो की बात की जाती है तो अक्सर जो भी संवेदनशील श्रोता हैं वो स्वाभाविक तौर पर ये फर्क महसूस करने में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत होती है कि ईगो और स्वाभिमान में दरअसल अंतर क्या है। ईगो नो डाउट उनकी समझ में आता है, उसे वो हार्मफुल समझते हैं, अपने अंदर उसे महसूस भी करते हैं, लेकिन जब वो बाहर सुनते हैं, क्लासेस हों या नैतिक उपदेशक हों, वो हमेशा स्वाभिमान की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की जब बात होती है तो अपने राष्ट्र के प्रति अभिमान, स्वाभिमान, भाषा के प्रति अभिमान, अपने जमीन के प्रति अभिमान, अपने यूं कह लीजिए कि गरिमा के प्रति अभिमान, माता पिता के प्रति अभिमान, गुरु के प्रति अभिमान, ज्ञान के प्रति भी थोड़े कुछ सीमा तक, अपने प्रोफेशन, तो इस तरीके से जब बात कही जाती है और उन बातों को जब वो स्वाभिमान से जोड़ दिया जाता है तो डेफिनेटली फिर ये अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कहां पर स्वाभिमान की सीमा समाप्त होती है और ईगो शुरू हो जाता है, या इसे वाइस वर्सा कह लें कि कहां तक ईगो का राज्य है और कहां से फिर स्वाभिमान की जो सरहद है वो शुरू हो जाती है। सच पूछे मित्रों, तो इन दोनों में अगर कोई अंतर है तो वो बहुत ही झीना अंतर है। इस बात को मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि इस पर मैंने बहुत सोचा है, बहुत विचार किया है। मैं माफी चाहूंगा कि मैं दोनों में अंतर इनफैक्ट नहीं कर पाया हूं। अगर अंतर नहीं कर पाया हूं, इसका मतलब यह है कि स्वाभिमान क्या होता है इनफैक्ट, इसको मैं अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया हूं, या यूं कह लीजिए कि इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया हूं कि आपके सामने मैं इन दोनों के अंतर को बहुत साफ कर सकूं। यह मुझे कुछ कुछ वैसे ही लगता है जैसे कि एक समुद्र है, समुद्र के एक पॉइंट के बाद आप कह देते हैं कि ये प्रशांत महासागर है और एक पॉइंट के बाद आप कह देते हैं कि अटलांटिक महासागर है। आपने मान लिया है, लेकिन दोनों की सीमाओं के आसपास के आप अगर पानी का परीक्षण करें, वैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो उसमें आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, आपने केवल नाम भर दोनों के रख दिए हैं। इनफैक्ट सच पूछिए मित्रों, तो मैं अभी तक स्वाभिमान की खोज नहीं कर सका हूं। हां, जब आत्मविश्वास की बात करते हैं तब मुझे थोड़ी सी चीज समझ में आती है, और कभी कभी तो मुझे यह लगने लगता है, और इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ईगो के प्रोटेक्शन में ही, उसकी रक्षा में ही, या उसको सही ठहराने के लिए ही हम एक तर्क देते हैं, एक नया शब्द हमने इजाद कर लिया है और वह है स्वाभिमान। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्वाभिमान के माध्यम से अपने ईगो को ही बनाए रखना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं ये फिर से आपको याद दिला दूं कि इस बारे में मेरी यह बहुत ही निजी राय है। आप सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, अपने अपने अनुभव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, और यदि आप लोगों में से भी कोई मेरे इस दृष्टि को क्लियर कर सके तो मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी रहूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक अफसर हूं, और स्वाभिमान का मतलब यह है कि कोई आपके गरिमा, जो आपकी डिग्निटी है, उसको ठेस न पहुंचाए, आपको व्यक्ति के रूप में माने, आपको बकायदे सम्मान दे, आपको बेइज्जत न करे, आपसे अच्छे से बोले, इसी को हम कहते हैं स्वाभिमान। अगर कोई उस पर ठेस पहुंचाता है तो वो यानी कि हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, और बट नेचुरल की तब हमें रिएक्ट करना चाहिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हमें आगे आना चाहिए, ये सामान्य रूप से कहा जाता है और व्यावहारिक स्तर पर कहीं कहीं ये बात ठीक भी मालूम पड़ती है। मैं तो अभी सिद्धांत की बात कर रहा हूं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो मुझे कंफ्यूज कर देता है। उदाहरण यह है मित्र, जैसे कि मान लीजिए मैं एक अफसर हूं, तो बट नेचुरल है कि मुझे कोई अपमानित न करे, और गलत तरीके से तो बिल्कुल न करे, मुझे ऐसी चीज के लिए जिम्मेदार न ठहराए जिसके लिए मैं हूं ही नहीं। अब मान लीजिए कि मेरे सीनियर हैं, और मेरे सीनियर मुझे कहते हैं कि तुमने ये गलत काम किया, या तुमने इसमें रिश्वत ली, और तुम बेईमान हो, फलाना फलाना हो, जबकि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, उनकी भाषा बहुत ही अपमानित करने वाली है, सबके सामने डांटते हैं, सबके सामने वो एक तरह से जलील कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं, हम इसी रूप में लेते हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर वो मेरे सीनियर हैं तो मैं ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा, सिर झुकाकर चुपचाप सुनता रहूंगा, बड़ी विनम्रता के साथ एक दो बार कह दूंगा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, किसी ने आपको गलत खबर दी है, चाहे तो आप इसकी जांच करवा लें, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी भाषा बिल्कुल विनम्र होगी, टोन बिल्कुल दबी दबी सी होगी, और बात खत्म हो जाएगी। अब ये बात अलग है कि ये बात मुझे सालती रहेगी, रात में मेरी नींद उड़ा देगी। अब एक दूसरी सिचुएशन है, बिल्कुल यही बात है, घटनाएं सब कुछ यही है, लेकिन जो कहने वाला व्यक्ति है वो अलग है। वो जो कहने वाला व्यक्ति है वह मेरा जूनियर है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, वही लोग खड़े हैं, वही बात वो कह रहा है, लेकिन वो मेरा जूनियर है। अब आप देखिए कि जब जूनियर मुझसे ये बात कह रहा है तो मैं अब किस तरीके से रिएक्ट करूंगा। उसने भी मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, लेकिन उस स्वाभिमान के ठेस की जो मेरी प्रतिक्रिया होगी वो बहुत तीखी होगी, इतनी तीखी होगी कि मेरी कोशिश होगी कि मैं भी उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाऊं, यानी कि ये दो स्वाभिमानों का एक द्वंद युद्ध शुरू हो जाएगा, कुश्ती शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए कि सिचुएशन बिल्कुल एक है, ब्लेम जो किया गया है एक है, उसी तरीके से गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है, बस केवल कहने वाला व्यक्ति अलग अलग है। अब सवाल उठता है कि जब पहले वाले व्यक्ति जो मेरे सीनियर थे वो जब कहते हैं तो उस समय स्वाभिमान को उतनी ठेस क्यों नहीं पहुंचती, या पहुंचती भी है तो मैं उसे दबाता क्यों हूं, मैं वहां तो रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जब मेरा जूनियर कह रहा है और उतनी ज्यादा अखड़ता के साथ नहीं कह रहा है, क्योंकि मैं उसका सीनियर हूं तो वो थोड़ी विनम्रता से ही कह रहा है, सर सर कह के बात कर रहा है, इसके बावजूद मैं बहुत ज्यादा बहुत तीखेपन के साथ रिएक्ट करता हूं, यानी कि यहां अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं अपने एक अलग ही रूप में उसके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो मित्रों, फिर ये लगता है कि क्या पहले व्यक्ति ने जो बात कही उसने मेरे स्वाभिमान को कम ठेस पहुंचाई, दूसरे ने ज्यादा ठेस पहुंचा दी। अगर स्वाभिमान का कारण, स्वाभिमान की परिभाषा यही है कि कोई आपकी गरिमा और इन सबको करे, तो दोनों ने समान रूप से कहा किया तो समान रूप से मैंने क्यों नहीं रिएक्ट किया। तो इस तरह से सैद्धांतिक रूप से जब मैं सोचता हूं ना इसके बारे में तो दिमाग बड़ा घिचपिच सा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि कहां एक खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है, मेरी तो समझ में मित्रों नहीं आता। फिर जब मैं और भी सोचता, इस पर मैंने सोचा है इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं जो अभी मन में आ रहा है वो कह रहा हूं। फिर मैं कृष्ण को देखता हूं, मैं अपनी बहुत सी समस्याओं के समाधान, चाहे वो तार्किक हो या भावनात्मक हो व्यावहारिक हो, मैं कृष्ण में ढूंढने की कोशिश करता हूं, या तो कृष्ण में ढूंढने की कोशिश करता हूं या महाभारत में ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो मैं जब कृष्ण को देखता हूं और जब इस स्वाभिमान को ढूंढता हूं तो मुझे बहुत विचित्र सी स्थिति कृष्ण में दिखाई देती है कि उनके लिए स्वाभिमान क्या है। जैसे जब युधिष्ठिर, महाभारत युधिष्ठिर यूं कह लीजिए कि जब अश्वमेघ यज्ञ करने लगे तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि भाई तुम अपनी पसंद का काम चुनो कि तुम इसमें क्या करोगे, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो तुम क्या काम करना चाहोगे। उस समय कृष्ण द्वारकाधीश थे, मतलब द्वारका के शासक थे। आपको ताज्जुब होगा सुनकर के कि कृष्ण ने अपने लिए काम चुना, और वो ये कि जितने भी यहां मेहमान आएंगे, गेस्ट्स आएंगे इस यज्ञ में भाग लेने के लिए, मैं उन सब मेहमानों के पैर धोऊंगा। सोचिए, अब वो द्वारकाधीश राजा हैं और पैर धोने का काम कर रहे हैं। तो अब एक राजा के कंपेयर के समानांतर आप उसके काम को रखेंगे, या यूं कह लीजिए कि अगर युधिष्ठिर ने कृष्ण को कह देता कि तुम आने वालों के पैर धो, तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती थी। और अगर वो खुद चुन रहे हैं तो वहां फिर स्वाभिमान को ठेस क्यों नहीं पहुंच रही है? वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है। अर्जुन के ड्राइवरी का उन्होंने काम किया, आज की भाषा में अगर हम कहें तो अर्जुन योद्धा है और उनके ड्राइवरी कर रहे हैं। अर्जुन के चरणों में बैठे हुए हैं कृष्ण, आप देखिए कभी चित्र में अर्जुन ऊपर बैठा हुआ है, कृष्ण उनके पैरों के पास बैठे हुए, जबकि अर्जुन से उम्र में कृष्ण 3.5 साल बड़े थे, उम्र में भी बड़े हैं। और अर्जुन तो अभी राजा नहीं है, अभी तो राजा बनने की ही तो लड़ाई हो रही है, जबकि कृष्ण तो ऑलरेडी राजा है, द्वारकाधीश है, फिर भी वो नीचे बैठे हुए हैं, अर्जुन के पैरों के पास बैठे हुए हैं और अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं। तो वहां एक स्वाभिमान की एक बड़ी विचित्र सी स्थिति दिखाई देती है कि यार ये फिर क्या है। एक मैं आपको और छोटी सी घटना बताता हूं। कृष्ण के बुआ के बेटे थे शिशुपाल, जो बहुत ही थोड़े से बदतमीज किस्म के थे और कृष्ण से बड़े चिढ़ते भी थे। तो उनकी बुआ बड़ी चिंतित रहती थी कि कहीं कृष्ण ऐसा ना हो कि शिशुपाल का कुछ करी दे। तो उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया था, उन्होंने वचन दिया था कि देखिए ये जब तक इसके मैं 99 या 999, थोड़ा सा मैं गिनती में यहां थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं फ्रेंड्स, कि चलिए मैं 99 मान लेता हूं कि 99 बार अगर ये मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जैसे ही 100वीं बार करेगा मैं माफ नहीं करूंगा, फिर मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और वही हुआ कि जब 100वीं बार शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान किया तो उन्होंने उसकी गर्दन उड़ा ली। तो वहां कृष्ण ने अपमानजनक शब्दों के विरोध में ये कदम उठाया, लेकिन उससे पहले वो 99 बर्दाश्त कर चुके थे। तो यहां आपको स्वाभिमान अपमान का एक नया रूप दिखाई दे रहा है। तो कृष्ण के मैंने अभी आपके सामने 3 स्वरूप रखे हैं जो ऑलरेडी वर्णित हैं। मित्रों इस पर विचार कीजिए। देखिए शायद आप कुछ निकाल पाए, मैं तो नहीं निकाल पाया हूं, इसलिए अभी मैं स्वाभिमान को लेकर चल ही नहीं पाता हूं। मेरे लिए फिर अगर स्वाभिमान को लें तो वो फिर एक दूसरे रूप में सामने आता है, कर्टसी, मैनर्स, सिविक सेंस, मानवीय व्यवहार, गरिमापूर्ण व्यवहार, अच्छा, अच्छे विचार, अच्छा आचरण, उस रूप में मैं स्वाभिमान को फिर थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो मित्रों इस बात के लिए माफ कीजिएगा कि मैंने आज आप लाइफ मैनेजमेंट में कोई हल नहीं सुझाया है, आप हल खुद ढूंढें, इसके लिए मैंने जरूर कुछ तत्व कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो दोस्तों अब मैं यही लाइफ मैनेजमेंट को आज के समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।